તારીખ 30-10-1995, શ્રી પરમાગમ સાર, બોલ નંબર 641-42-43-708-710 અને 851 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 638.
जिसके द्वारा जानने में आवे उसको उसको लक्षण कहिए। જે વડે જણાય તેને લક્ષણ કહીએ, જ્ઞાન લક્ષણ કી બાત હૈ। જ્ઞાન દ્વારા આત્મા જાનને મેં આતા હૈ, તો જ્ઞાન કો લક્ષણ કહેને મેં આતા હૈ। જ્ઞાન દ્વારા આત્મા જાનને મેં આતા હૈ, ઇસલિયે જ્ઞાન દ્વારા આત્મા નિશ્ચિત હોતા હૈ યા નિર્ણય હોતા હૈ। જ્ઞાન દ્વારા આત્મા કા निर्णय होता है, निर्णय होता है को या पहचान होती है को, या लक्षण तो वेदन रूप है, लेकिन वेदन ग्रहण नहीं होता है तो कभी यहाँ से भी ज्ञानी समझाते हैं कि देखो जो जानता है वो ज्ञान है, जो जानता है वो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कहते ही ज्ञेय को जानता है वो ज्ञान, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, एक स्वीकार है, वो यथार्थ पहचान करने में काम में नहीं आता, इससे पहचान नहीं होती। इसलिए ज्ञान सामान्य वो लक्षण लिया जाता है। ज्ञेय को जाने ऐसा कोई खास ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान उसको लक्षण नहीं कहते, सामान्य ज्ञान को लक्षण कहते हैं, और सामान्य ज्ञान है वो वेदन रूप है, इसलिए वेदन लक्षण से जाना जाता है। पंद्रह गाथा वाला ये तर्क हो सकता है कि ये भी ज्ञान है, विशेष भी ज्ञान है, सामान्य भी ज्ञान है, फिर विशेष ज्ञान को लक्षण नहीं कह करके सामान्य ज्ञान को लक्षण क्यों कहते हो, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। ज्ञान दोनों ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान लक्षण ऐसी सामान्य बात तो ऐसी आती है ज्ञान लक्षण, फिर उसकी गहराई में जाते हैं तो ये सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान कौन सा ज्ञान लक्षण, ये सवाल पैदा होता है। तो सामान्य ज्ञान लक्षण है, सामान्य ज्ञान क्यों लक्षण है कि विशेष ज्ञान अनेकाकार रूप है और आत्मा अनेकाकार रूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप एकाकार है, इसलिए इसका लक्षण भी एकाकार वही सदृश लक्षण है, अनेकाकार है वो विसदृश है, सदृश नहीं है। सदृश मैंने सरीखा, जेवू लक्षण होय एवूज लक्ष्य होय, बेमा सरखापणो होय तो ओळखण थाय, फेरफार वाळो होय तो ओळखण केवी रीते थाय, न थाय। इसलिए ज्ञान द्वारा आत्मा निश्चित होता है या पहचान होते हैं। पुण्य पाप आदि के शरीर आदि ज्ञान द्वारा नक्की करने योग्य नहीं है। ज्ञान का उपयोग सदुपयोग तुम कैसे करोगे, पुण्य पाप को नक्की करने में करोगे, शरीर को नक्की करने, शरीर में ने ये तंदुरुस्त शरीर है, वो अच्छा शरीर है, या आदि में जगत के पदार्थ का निर्णय करने में ज्ञान का प्रयोग करोगे, उसका उपयोग कहाँ करोगे? ज्ञान का उपयोग आत्मा को निश्चय करने के लिए करना चाहिए, दूसरा पदार्थ का स्वरूप नक्की करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना नहीं चाहिए। पुण्य पाप आदि के शरीर आदि ज्ञान द्वारा नक्की करने योग्य नहीं है, परंतु ज्ञान द्वारा आत्मा नक्की करने योग्य है, यानी निश्चित करने योग्य है। ज्ञान लक्षण पुण्य पाप का भी नहीं और ज्ञान लक्षण देवगुरु शास्त्र का भी नहीं है। ज्ञान लक्षण अपने आत्मा का है, दूसरे आत्मा का भी नहीं और पुण्य पाप का भी नहीं है। यह ज्ञान तो लक्ष्य ऐसा आत्मा का लक्षण है जिसका लक्ष्य करना है, ऐसा स्वरूप का, आत्मस्वरूप का वो लक्ष्य है। ज्ञान है वहाँ उसके साथ अनंत गुण भी है। ज्ञान मात्र कह करके दूसरा गुण का निषेध नहीं है कोई। ज्ञान है वहाँ उसके साथ अनंत गुण है। ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसा निश्चित करते ही अनंत गुण वाला आत्मा का निश्चय हो जाता है और ऐसा निश्चय साध्य है। लक्षण साधक है और निश्चय है वो साध्य है, यानी लक्षण साधन है और निश्चय। साध्य है यानी लक्षण साधन है और निश्चय है वो साध्य है। वही विषय चलता है 642 643 दोनों में भी वही विषय चला है। देवगुरु शास्त्र का भी मान्य पदार्थ अपना आत्मा की पहचान करनी है ना। यहाँ प्रकरण वो चलता है, यहाँ वो प्रकरण चलता नहीं है। पहले कौन सा पहचान होगा, फिर कौन सा होगा, वो प्रकरण नहीं चलता है। बात क्रम में ऐसा ही है कि पहले सजीवन मूर्ति की पहचान होती है, बाद में स्वरूप की पहचान होती है, लेकिन वहाँ वो बात अध्यार रहती है, वहाँ तो प्रकरण वो चलता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप पहचानने में तुम्हारा ज्ञान लक्षण है, तुम्हारा ज्ञान लक्षण से देवगुरु शास्त्र पहचानने में नहीं आएगा, वो उनके परिणमन से पहचानने में आएगा। तेरा परिणमन से तेरा स्वरूप पहचानने में आएगा और उनके परिणमन से उनका स्वरूप पहचानने में आएगा। देवगुरु शास्त्र का लक्षण नहीं है ऐसा करके क्रम का निषेध करने का यहाँ कोई अभिप्राय और यहाँ कोई हेतु ऐसा नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अपना ज्ञान लक्षण से पुण्य पाप की भी पहचान नहीं होती और अपना ज्ञान लक्षण से देव गुरु शास्त्र की पहचान करने की नहीं होती है। उसका लक्षण वो विशेष हो गया, विशेष ज्ञान हो गया। अब 642 में क्या कहते हैं, आत्मा में जहाँ एक गुण है वहाँ ही अनंत गुण साथ रहा हुआ है, प्रत्येक प्रदेश में पूरा आत्मा में जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण भी है। उसमें विभुत्व शक्ति कारण है, आत्मा की जो विभुत्व शक्ति जिस शक्ति के कारण से सभी गुण पूरे आत्म प्रदेश में व्यापक होते हैं, व्याप जाते हैं, ये विभुत्व शक्ति के कारण से होते हैं। तो अनंत अनंत गुण सर्व प्रदेश में व्यापे हुए हैं, અનંત ગુણ મારા હા અનંત અનંત ગુણ મારા અનંત ગુણ મારા જૈસે કેરી હૈ આમ હૈ વહાં રંગ ભી હૈ વહાં રસ ભી હૈ વહાં ગંધ ભી હૈ પર વહાં સ્પર્શ ભી હૈ હૈ કે નહીં હૈ પુદગલ કે અનંત ગુણ હૈ કે નહીં પ્રદેશ પ્રદેશ મેં એક પરમાણુ એક પ્રદેશ જીતના દ્રવ હૈ તો વહાં ભી અનંત ગુણ હૈ તો એ તો અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક હૈ તો ઉસમે ભી અનંત ગુણ હૈ और दोनों में भी भूत्व शक्ति है पुद्गल में भी छो में भी भूत्व शक्ति सामान्य है अनंत गुणों में लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है लेकिन प्रदेश तो सबका एक ही है अनंत भाव में एक भाव रूप अनंत गुणों का पिंड वह आत्मा है देखो अनंत भाव में एक भाव रूप अनंत अनंत गुणों का अनंत भाव है लेकिन आत्मभाव एक है सबका आत्मभाव एक है अनंत आत्मभाव नहीं है अनंत भाव में एक भाव रूप अनंत भावों का एक भाव क्योंकि व्यापक रूप से हैं अनंत गुणों का पिंड मैंने द्रव अनंत गुणों का एक रूप द्रव वही आत्मा है उसी को आत्मा कहते हैं इस तरह से आत्मा पहचानने में आता है वही विषय चला है हाँ नीचे तो अकृत्वत्व वगैरह आता है 643 में कि एक ज्ञान को ख्याल में लेते हैं तो उसके साथ जो अनंत गुण है वही एक ही साथ ख्याल में आता है जैसे कि शक्कर तो शक्कर का आकार देख करके उसका सब गुण ख्याल में आता है या एक गुण चखने से पूरी शक्कर ख्याल में आ जाती है जैसे किसी भी परिचित व्यक्ति हो उसका नाम लेते ही उसकी सब विशेषता अभेद रूप से मालूम हो जाती है इसका नाम ले लो फलाना भाई तो बस वो पहचान लिया उसका जो भी विशेषता है पूरा ख्याल उसका आ जाता है ऐसे एक आत्मा शब्द बोले ज्ञानी तो जिसको आत्मा की पहचान है उसको पूरा आत्मा ख्याल में आता है ज्ञान शब्द से पूरा आत्मा ख्याल में आता है कोई एक गुण से बोलो कोई एक नाम से बोलो वस्तु पूरी ज्ञान में आ जाती है एक ज्ञान को ख्याल में लेते हैं तो उसके साथ जो अनंत गुण है वे एक ही साथ ख्याल में आते हैं यह एक रूप आत्मा ख्याल में आते हैं ऐसा एक रूप आत्मा ख्याल में आने से सम्यक दर्शन होता है वही सच्चा दर्शन है आत्मा भी मुक्तपणा हो जाता है एक रूप आत्मा ख्याल में आते ही ज्ञानपूर्वक श्रद्धान होता है श्रद्धा भी अनुभव के काल में सम्यक हो जाती है उसके साथ अनंत गुण के अंश अनंत गुण के अंश विकसित मैंने खुला हुए बिना रहे नहीं जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ अनंत गुण यथासंभव स्थान अनुसार शुद्ध स्पष्ट हुए बिना रहता नहीं है इस तरह से वो पहचानने के विषय में बहुत से पर्चे लिए हैं फिर है 708 और 710 आत्मा का वेदन कैसे हो, कि वह कोई निमित और राग में प्रीति करने से नहीं होता। आत्मा का वेदन कहो या आत्मा का अनुभव कहो, वो कैसे होता है, कि वो कोई निमित और राग में प्रीति करने से नहीं होता है। क्या मतलब है इसका, कि जहाँ लग जीव को राग में प्रीति है और राग के विषयभूत अनेक पदार्थ में प्रीति है, वहां तक उसको आत्मस्वरूप का अनुभव होता नहीं है। एक म्यान में दो तरवार नहीं रहती। स्वरूप का प्रेम से, प्रीति से, रुचि से स्वरूप का अनुभव होता है, और पर की रुचि से, पर की प्रीति से स्वरूप का अनुभव हो सकता नहीं है। वो अवरोध है, स्वरूप का अनुभव करने में वो अवरोध है। वो स्वरूप का निश्चय नहीं होने देगी। वो तो सब ज्ञानियों की एक ही बात है, परंतु अब कैसे होता है, चेतन की चेतना है, चेतन द्रव्य है, उसकी चेतना लक्षण है। वो अलग बात है, यहाँ देवगुरु शास्त्र निमित्त नहीं लिया है। यहाँ तो कोई भी ज्ञान का ज्ञेय हो उसको निमित्त लेते हैं, यहाँ देवगुरु शास्त्र कहने का अभिप्राय नहीं है। जो क्रम जहाँ है वहाँ तो ऐसे का जो है सो है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ तो कहते कि परद्रव्य है वो निमित्त है, ज्ञान में ज्ञेय होते हैं, जीव को उसमें रुचि होती है, प्रीति होती है, तो उसको स्वरूप का वेदन होगा नहीं, स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, स्वरूप का अनुभव होने में वो अवरोध होगा। परंतु चेतन की चेतना है, ये ज्ञान दर्शन द्वारा ख्याल में आती है। कैसे ख्याल में आती है चेतना, ज्ञान दर्शन द्वारा। वो पर से तो नहीं, परंतु ज्ञान के अलावा दूसरा गुणों से भी ख्याल में नहीं आती। मेहनत बचाया, परिश्रम बचाया फालतू, कि तुम कहीं ज्ञान के सिवा पहचान करने का चेष्टा मत करो। दूसरे को अस्तित्ववादी गुण है, आनंद आदि गुण है, इसे आत्मा पहचाना जाता है।
दर्शन को भी निकाल दिया।
हाँ, ज्ञान द्वारा ही, क्योंकि दर्शन सूक्ष्म है, दर्शन सूक्ष्म है, पकड़ने में
नहीं आता,
इसलिए। ऐसे ज्ञान लक्षण द्वारा चेतना जानने में, चेतना द्वारा चेतना सत्ता का निर्णय हुआ, वो ज्ञान में चेतना है, ज्ञान में
चेतना
है, तो चेतना सत्ता द्वारा चेतना का निर्णय हुआ, कोई दूसरे से निर्णय नहीं हुआ है, उनका ही अंग है, यहां से निर्णय हुआ है, उसका ही अवयव है, वहां से निर्णय हुआ है। खास गुण ज्ञान दर्शन, खास भाव अनुभव करो, होते चेतु ते, चेतु मैंने वेदन करो, चेतु मैंने वेदन करो, अनुभव करो। चेतनामा ज्ञान दर्शन बे आवे छे, चेतनामा ज्ञान दर्शन बनने आवे छे। एक गुण थी कहीं ज्ञान दर्शन ने, ભેદપણે જ્ઞાન દર્શનને કહીએ તો ચેતના કહેવાય, અને ભેદથી કહીએ તો એને એને જ્ઞાન દર્શન કહેવાય છે, એમ છે. એસા જ્ઞાન લક્ષણ દ્વારા ચેતના જાણ જાણને મેં ચેતના દ્વારા ચેતના સત્તા કા નિર્ણય હુઆ, દૂસરે સે નિર્ણય હુઆ નહીં હૈ, ચેતના સત્તા કા નિર્ણય ચેતના સે હી હુઆ હૈ, ક્યોંકિ જ્ઞાન મેં ચેતના હૈ. જબ જ્ઞાન મેં ચેતના ખ્યાલ મેં આઈ તબ ચેતન સત્તા હૈ એસા નિર્ણય હુઆ. कहां भेद पड़ता है, चेतन अचेतन का भेद पड़ जाता है ज्ञान लक्षण द्वारा, ज्ञान विदन द्वारा. पहचानने के वक्त में राग और परद्रव्य से भिन्न जो मेरा स्वरूप है पहचानने में, उसमें चेतन अचेतन सत्ता अलग अलग हो जाती है. मैं चेतन सत्ता और बाकी के अचेतन सत्ता में जाते हैं, राग और परद्रव्य अचेतन सत्ता में जाते हैं. હા, બે ફાટ જુદા પડી ગયા. હા, દ્રવ્ય જાણને દેખને વાલી વસ્તુ હૈ, ઉસકે દ્વારા સુખ કા અંશ પ્રગટ હુઆ. જબ જાણા ત્યારે સુખ કા અંશ પ્રગટ હુઆ. સાધન જ્ઞાન હૈ અનુભવ કરને કે લીએ, અનુભવ કે પહેલે જ્ઞાન સાધન હૈ. જ્ઞાન સાધન સે આત્મા સાધ્ય હોતા હૈ, એસી બાત હૈ. ये अनुभव कराने के लिए आत्मा का निर्णय करने की बात है, पहचान करने की बात है. पहचान होता है बाद में अनुभव
होता है.
पहचान होता है तो किसकी पहचान हुई, कि सिद्ध स्वरूप अनंत महिमावंत अपना जैसा स्वरूप है उसकी पहचान हुई, तो उसकी महिमा आई. महिमा आई वो महिमा बढ़ करके अनुभव में परिणमित हो जाती है. अनुभव और सम्यक दर्शन क्या चीज है, कि स्वरूप का तीव्र अनुभव की एक दशा है. क्या स्वरूप का तीव्र महिमा की वो दशा है, उसको अनुभव कहते हैं. जिसको स्वरूप का अत्यंत अत्यंत महिमा आया तो वो महिमा अनुभव में परिणमित हो जाता है. इसलिए महिमा के दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन और स्वानुभव, ये स्वरूप महिमा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा लेना. क्या होता है, મતલબ ક્યા ક્યા કહેના ચાહતે હૈ? અનુભવ હોને સે સુખ આનંદ અનુભવ મેં આતા હૈ. જ્ઞાનને દેખને વાલી વસ્તુ હૈ, ઉસકે દ્વારા સુખ કા અંશ પ્રગટ હુઆ, તબ ચેતન સત્તા કા નિર્ણય હુઆ. વો અનુભવ કે કાલ કા નિર્ણય લિયા હૈ, તો ઉસકો સુખ ભી હુઆ. હા, વહાં વો નિર્ણય લિયા હૈ. પહેલે જો નિર્ણય હુઆ હૈ વો પહેચાનને કા હૈ, વહાં સુખ કા અનુભવ નહીં હૈ. વહાં સુખ કી પહેચાન હૈ, સચ્ચા સુખ આત્મસુખ કેસે હોતા હૈ ઉસકી પહેચાન હૈ. લેકિન અનુભવ તો સુખ કા અનુભવ તો સમ્યક દર્શન કે કાલ મેં હોતા હૈ.
અનુભવ હોને કે બાદ મેં નિર્ણય સત્ય
ऐसा एक अनुभव में आया कि ऐसा ही हूँ, यहाँ प्रतीत लेना है, निर्णय मैंने प्रतीत हुआ, जैसा अनुभव में आया वैसा ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीत आती है। उसको भी निर्णय भी बोलते हैं, प्रतीत भी बोलते हैं, और पहले जो निर्णय होता है उसको भी कभी प्रतीत बोलते हैं। तो प्रतीत और निर्णय दोनों जगह इस शब्द का उपयोग है, जहाँ जो बात चलती हो वो समझ लें। तो एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, एक शब्द का 20 अर्थ होता है। अब अपने आप शास्त्र पढ़े तो कौन सा अर्थ लागू करेगा बताओ? इसलिए जो विवेकी है, क्या जो विवेकी है वो पहले शास्त्र नहीं पढ़ता है, पहले सत्संग करता है। क्यों? कि उसके विवेक में ऐसा बात आता है कि शास्त्र तो शब्द रूप है और एक शब्द का तो अनेक अर्थ होता है, अब कहाँ कौन सा अर्थ लागू करना वो मुझे तो समझ में आया नहीं, आएगा नहीं, तो मैं कहीं जो अर्थ नहीं करना चाहिए वो अर्थ करूं तो क्या होगा, तो मेरी समझ में बात आएगी
नहीं, इतना नहीं होगा, लेकिन वहां अगर विकृत ग्रहण हो गया तो ग्रहित मिथ्या हो जाएगा,
तो भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है।
उन्मुख दोनों अर्थ है, सामने देखना और उसे उल्टा
देखना, हां वही है, उन्मुख का दो अर्थ होता है, सन्मुख और विरुद्ध, पर सन्मुख और स्वसन्मुख, दो अर्थ उन्मुख का होता है। क्या करेगा, गुरु में, इसलिए कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान
नहीं है,
नहीं है, क्योंकि जिसकी दृष्टि में अपना स्वरूप ही सर्वस्वरूप से उपादेय है, ऐसे जिसकी दृष्टि खुल गई है, उनको शास्त्र के शास्त्र के वचनों की मर्यादा समझ में आ जाती है। किस तरह से? कि लिखने वाले भी वही दृष्टि वाले थे, जिसने शास्त्र लिखे वो भी ऐसी दृष्टि वाले थे, तो पढ़ने वाले को वो मर्यादा समझ में आती है कि अच्छा वो उपादेयता स्वरूप के उपादेयता, यहाँ से वो कैसा किस तरह से कहना चाहते हैं, यहाँ कौन सी बात चल रही है, किस प्रकार से वो बात चल रही है, वो उनको मालूम पड़ता है, दूसरे को मालूम नहीं पड़ता।
मुझे शास्त्र नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ सत्संग में चले जाना है, मुझे सूझ ही ज्ञानी के मार्ग का प्रवेश द्वार है।
हाँ, ऐसा सुझाना चाहिए, ऐसा सुझाना
चाहिए।
तो मेरे मुझे पहले शास्त्र नहीं पढ़ना है, पहले मुझे सत्संग करना है, वरना मैं अपने आप को नुकसान करूं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा रिस्क है, ऐसा जोखिम है, वो विवेकी जन लेता नहीं है, ऐसी बात है।
आचार्य ने जो कहना है वो सत्पुरुष के समझ में है, आचार्य को जो कहना है जो बात जी सत्पुरुष को मालूम है,
मालूम है, क्योंकि दोनों की दृष्टि एक है, आचार्य की भी दृष्टि ऐसी है कि सर्वस्व रूप से अपना आत्मा ही उपाधि है, वो दृष्टि को लेकर के वो सब कुछ लिखते हैं, और पढ़ने वाले को वही दृष्टि साध्य है तो उनको उसके वचनों की मर्यादा समझ में आ जाती है।
गुरुदेव ने ये सब देखा, अपन हम लोग सब उदार करते हैं, हम लोग सब
सही समाज दृष्टि नहीं थी,
दृष्टि गुरुदेव ने थी,
दोनों की दृष्टि एक होने से।
हाँ जी, चेतन और जीव दोनों एक ही है ना,
पदार्थ तो एक है, पदार्थ दो नाम दो है, जीव को चेतन भी कहते हैं, चेतन को जीव भी कहते हैं,
दोनों की दृष्टि एक
हाँ दोनों की दृष्टि एक है, इसलिए कहने वाले का दृष्टिकोण का पता चलता है। इसलिए शास्त्र पढ़ना है तो कहाँ खड़ा रह करके पढ़ना है, ये मुद्दे की बात है। एक दफे कलकत्ता में स्वाध्याय चल रात को चर्चा चलती थी 10 लक्षण करोड़ में। मुन्नलाल जी के लड़के हैं सुभाग जी ने प्रश्न उठाया कि भाई हम आप लोगों की बात सुनते हैं, समझदार आदि की बात आती है ज़्यादा, तो बात दो प्रकार की आती है कि राग जीव राग का करता नहीं है और जीव ही राग करता है, दो ही बात समझदार में आती है। अगर जीव सर्वथा राग नहीं करे तो राग का अभाव करके वितरागता के उत्पन्न करने का कोई उपदेश और कोई हेतु कोई बात रहती नहीं। और आप ये भी कहते हैं कि नहीं जीव के स्वरूप में तो राग है नहीं, वो करे कैसे, उनके स्वभाव में तो वो चीज ही नहीं है कि वो कर सके। अब हमको क्या मानना, ऐसे आप गुरु की महिमा करते हो और कहते कि निमित्त कुछ करता नहीं है, हमको मानना क्या। परस्पर विरुद्ध बहुत सी बातें आती हैं, करें क्या। उन्होंने बोला तो देखो आप बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट मनुष्य को टी बोर्ड ना सेक्रेटरी कलकत्ता में, आपको कहाँ खड़ा रह करके वो समझना है वो बताओ। कोई भी बात हो समझने के लिए कौन सा दृष्टिकोण हमारे पास है, मैंने हम कहां खड़े हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान को भी लगता है कि ये कोई मामूली बात यहां चल रही नहीं है उनको चल जाता है कि हमारी बुद्धि से भी कोई आगे की बात इधर चलती है, वो बात हमने नहीं सोची थी, प्रश्न पूछने वाले ने वो बात नहीं सोची थी। वरना ये समझ लेते कि ये सब मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि लगाना नहीं हो, वहां धर्म करना है, धर्म करना है वहां बुद्धि लगाना नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा से सब जाते हैं, संप्रदाय में तो सब अंधश्रद्धा से ही जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ज्ञान की व्यायामशाला है जितना ज्ञान की एक्सरसाइज हो जाएगी, ज्ञान का व्यायाम इतना हो जाएगा कि पसीना आ जाएगा अच्छे अच्छे को, इतनी बुद्धि। सुपर इंटेलिजेंस का विषय है ये, तो इंटेलिजेंस का विषय नहीं है, सुपर इंटेलिजेंस का विषय है ये। कितना भी बुद्धिमान हो एक दफे तो खड़ा रह जाए कि बात कोई मेरी बुद्धि से आगे की है, ऐसी अलौकिक बात है। तो पहले विचार करना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से प्रश्न करता हूँ, वरना बात समझ में आएगी नहीं, मेरी बुद्धि फेल जाए हो जाएगी, कितनी भी बुद्धि है मेरी बुद्धि फेल हो जाएगी। एक प्रश्न उठाया बात खत्म हो गई उसकी, ऐसी बात है। ज्ञान द्वार में स्वरूप शक्ति को जानना, ज्ञान लक्षण है ना, ज्ञान के पर्याय वो दरवाजा है, घर को दरवाजा होता है ना द्वार में, उसमें क्या देखना, स्वरूप की शक्ति को देखना, नाम शक्ति को भी नहीं लिया, स्वरूप की शक्ति आत्मा की शक्ति को देखना। किस तरह से, कि जैसे अग्नि की एक चिंगारी में अग्नि की पूरी शक्ति देखने में आती है, आती है कि नहीं आती है, रूई का गोडाउन हो या दारूखाना का गोडाउन हो, हाँ वहाँ एक चिंगारी भी आ जाए तो सब भस्म हो जाए। एक चिंगारी में क्या देखने में आता है कि अग्नि की पूरी शक्ति देखने में आती है। ऐसे ज्ञान द्वार में भले ही ज्ञान अल्प हो लेकिन उसकी पूरी शक्ति को देखना, ये देखने की टेक्निक है। देखने की ये टेक्निक है। वहां तो अग्नि प्रकट भी है लेकिन बॉम्ब फूटा नहीं है, और बॉम्ब पड़ा है तो रख के गया, तो बॉम्ब को देखते हैं या बॉम्ब की शक्ति को देखते हैं? बॉम्ब को देखे तो कोई चीज पड़ी है ऐसा लगेगा, और शक्ति को देखेंगे तो एक सेकंड वहां खड़ा रहेगा
नहीं।
भागेगा यहां से, भागेगा कितना, भागेगा जोर से कि पीछे मुड़ के देखेगा
नहीं,
पलट के देखेगा नहीं, मुंह पलट के देखेगा नहीं, इतना भागेगा क्योंकि उसने शक्ति को देख लिया। जो प्रकट नहीं है उसको भी शक्ति में शक्ति देखने की हमारे में ताकत है, तो ये तो प्रकट है उसमें शक्ति देखने का क्यों नहीं आता है? और प्रकट में भी हम शक्ति देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तब तो भक्ते हैं। अनुभव प्रकाश में से ही है, 710 अनुभव प्रकाश में से है। वो शब्द प्रयोग दीपचंद जी ने किया है, ज्ञान द्वार में स्वरूप शक्ति को जानना, वो शब्द प्रयोग दीपचंद जी कासलीवाल ने किया है। लक्षण ज्ञान और लक्ष्य आत्मा अपने ज्ञान में भाषित होता है। भाषित होना है, होता है मैंने लगने लगता है कि मैं ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण गुण संपन्न अनंत सामर्थ्यवंत सिद्ध समान आत्मा हूं। जब ऐसा भाषित होता है तब सहज आनंद धारा बहता बहती है, उसको अनुभव कहने में आता है। आनंद सहित वो बात हो तो उसको अनुभव कहने में आती है। यही विषय का आखिरी वचनामृत है 851। वर्तमान ज्ञान दर्शन वीर्य का अंकुर है, यह त्रिकाली का अंश है। वर्तमान मैंने प्रगट 834 पाने में नीचे का मतनामृत है, नीचे वाला। वर्तमान ज्ञान दर्शन वीर्य का अंकुर है, वह त्रिकाली का अंश है। जो त्रिकाली स्वभाव है उसका एक अंश प्रगट है, वर्तमान मैंने प्रगट है। तो प्रगट और अप्रगट के बीच में कोई खंड नहीं है, कोई सांध नहीं है, कोई भेद नहीं है। प्रगट और अप्रगट चीज सलंग है, अनुभव स्वरूप। ना आत्मा केवल प्रगट है, ना आत्मा केवल अप्रगट है। जो सर्वथा प्रगट होता तो सबको मालूम पड़ जाता, और सर्वथा अप्रगट होता तो किसी को मालूम नहीं पड़ता, ये बात हो जाती है। प्रगट से पकड़ाई से ज्ञान थी त्रण प्रगट स्वभावंश में ज्ञान दर्शन वीर्य पकड़ाई से ज्ञान थी। આ તો બુદ્ધિનો તો ઉપયોગ સૂક્ષ્મ હતો ને, એટલે એમને તો પોતાના અનુભવથી સૂક્ષ્મતાથી બધી વાતો બહાર મૂકી છે. ઉસ અંશ દ્વારા ત્રિકાલી આત્મતત્વ કા નિર્ણય હોતા હૈ, જો અંશ પ્રગટ હૈ વો પ્રગટ અંશ છે, જો અપ્રગટ ત્રિકાળ હૈ ઉસકા ભી નિર્ણય હોતા હૈ, ક્યોંકિ વો તો સળંગ હૈ. જૈસે એક સર્પ કી પૂંછ દેખી આપને, ક્યા હુઆ કે ઘર મેં ફર્નિચર હૈ, કબાડ વગેરે કુછ હૈ ને ફર્નિચર, ઉસકે નીચે સર્પ પડા હૈ, લેકિન ઇસકી પૂંછ બહાર રહે ગઈ, આપને ક્યા દેખા? અરે ઘર મેં સર્પ હૈ, ક્યા કહેંગે? એસા કોઈ તર્ક નહીં કરેગા કે હમને તો પૂંછ દેખી, પૂરા નહીં દેખા, પૂરા દેખેંગે તબ માનેંગે, એસા કોઈ કહેગા? પૂરા સર્પ દેખી ગયા, ઓર વો ક્યા કરેગા વો ભી દેખ ગયા, તો ભય હો ગયા. તો એક અંશ સે પૂરા અંશ કા જ્ઞાન હોઈ જાતા હૈ. એસા મતિશુદ્ધ જ્ઞાન મેં એસી તાકત હૈ કે અંશ કો દિખે તો અંશ કો ભી સમજ લેતા હૈ વો. વો અંશ દ્વારા ત્રિકાલી આત્મતત્વ કા નિર્ણય હોતા હૈ. જૈસે દેખો એક બહુ અચ્છા દ્રષ્ટાંત દે, જૈસે આમ કે દો પત્તે, આમ કે પેડ કે દો પત્તે, છોટા પૌધા હો, આમ કા પેડ નહીં લેકિન છોટા સા પૌધા હો, છોડ જેને આપણે કહીએ છીએ, ઉસકા દો પત્તા બહાર જમીન સે નિકલા હો, ગુઠલી મેં સે અંકુર ફૂટા, હા આમ કા અંકુર ફૂટા, દોય પત્તા એક સાથ બહાર નિકલે, ઉસમે દો એક સાથ નિકલતા હૈ, ઉસ પર સે નક્કી હો જાતા હૈ કે ઉસકા બીજ હૈ વો આમ કી ગુઠલી હી હૈ. ગુઠલી કો દેખા નહીં, કિસકો દેખા? દો પત્તે કો દેખા, તો બીજ કા પતા ચલ ગયા કે અંદર મેં જમીન મેં ક્યા ચીજ હૈ, બીજ કોન સા હૈ, ઉસકા પતા ચલ જાતા હૈ. એસા જિસ ચીજ કી પહેચાન હો, એસે જાંબુ હો કોઈ ભી હો, પત્તે કે આકાર સે બીજ કોન સા હૈ ઉસકા પતા લગ જાતા હૈ. વહ બીજ અવ્યક્ત હોને પર ભી, વહ બીજ અવ્યક્ત હોને પર ભી દિખતા નહીં હૈ જમીન મેં, ફિર ભી પત્તે દ્વારા ઉસકા નિર્ણય હોતા હૈ, હોતા હૈ કે નહીં હોતા હૈ, કે હોઈ જાતા હૈ. એસે જ્ઞાન દર્શન વીર્ય કા અંશ હૈ, વો ચૈતન્ય કા અંશ હૈ, વો કિસકા અંશ હૈ? ચૈતન્ય કા અંશ હૈ. મતિ શ્રુત જ્ઞાન કી ગહેરાઈ ઇતની હોની ચાહીએ કે અંશ પર સે અંશ કો ગ્રહણ કર લે, પૂરા આત્મા કો ગ્રહણ કર લે, સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, યા મેરે સમાન સિદ્ધ કા પદ હૈ, ક્યા હૈ? સિદ્ધ કો સમજે તો સિદ્ધ સમાન મેરા પદ હૈ, પર અપને કો સમજે તો ક્યા લગેગા કે જૈસા હું મેરે સમાન સબ સિદ્ધ હૈ, જીતને ભી સિદ્ધ હૈ વો મેરે સમાન હૈ, કોઈ અંતર નહીં હૈ. એસે જ્ઞાન દર્શન વીર્ય કા અંશ હૈ, વો ચૈતન્ય કા અંશ હૈ, ઉસસે ચૈતન્ય સ્વભાવી આત્મા કા નિર્ણય હોતા હૈ, અખંડ કા નિર્ણય હોતા હૈ. જો અંશ બહાર વ્યક્ત હૈ ઓર જો અંશ અવ્યક્ત હૈ ત્રિકાલી મેં, એ દોનો અંશ ખંડ ખંડ નહીં હૈ, વસ્તુ એક અખંડ હૈ, ઇસકા એક અંશ બહાર હૈ એક અંશ અંદર હૈ, એક અંશ વ્યક્ત હૈ એક અંશ अव्यक्त है, व्यक्त अंश से अव्यक्त का भी निर्णय
हो जाता है।
सैंपल से पूरा निर्णय होता है कि नहीं होता है। सोना को कसौटी पर घिसते हैं तो घिसके पर कसौटी पर जो दाग आता है सोने का पीला, वो तो सैंपल है, वो तो सैंपल है। और जेवर में से भी एक इतना सैंपल निकाल करके घिसते हैं, इतना सैंपल जो पकड़ में आए उतना पकड़ करके घिस देते हैं। पूरा का दाम निकालते कि नहीं निकालते हैं, यहाँ मन जाने हैं, ऐसा ही कहना है ना। मतलब ये तर्क क्यों नहीं आया, तो वहाँ तो सब बात हमारी पहचान वाली थी, तो जानकार है वो जान लेता है, लेकिन अनजाना नहीं जानता है। हम तो रहे हैं अनजाने, अनजाने है वो बात सही है, लेकिन अनजाने रहना है या जानकार होना है, तो परिचय करो, परिचय से जानकार हो ही जाओगे। एक लड़का स्कूल से कॉलेज से पढ़ करके बाजार में जाता है, कमर्शियल लाइफ में प्रवेश होता है ना, पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर बाजार में जाना होता है, तो वहां ऐसा बोलता है कि हमारे स्कूल में तो बाजार थी नहीं, हमारे स्कूल में तो व्यापार थी नहीं, दुकान थी नहीं, हमको नहीं आएगा हाँ? कोई बात, ये बात तो हमने सीखी नहीं है। वहां ऐसा नहीं बोलता है, तो उसको मालूम है कि ये बात हमको नहीं सीखनी है, और उत्साह से वो सीखने को लग जाता है। उत्साह लाता है कि नहीं लाता है, और थोड़े टाइम में सीख भी जाता है, नहीं सीखता है क्या? वहां तो तर्क नहीं करता है कि हमको ऐसा नहीं सिखाया था कि दुकान पर कैसे बैठना, ग्राहक को कैसे समझाना, वो बात हमको नहीं सिखाई थी, वो चीज हमको नहीं मालूम है कि गेहूं का कितनी जात हो, अनाज का धंधा हो तो कोई भी चीज का, चाय का हो तो चाय कितनी जात की, हमको तो नहीं सिखाया था। तो वो बात स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, वहां दूसरा शिक्षण होता है और बाजार में दूसरा शिक्षण होता है। तो वहां उत्साह लेकर के सीखता है, मैं अनजाना हूं क्या करूं, ऐसे रोने लगता है क्या? हंसते हंसते सीखता है क्या? रोते रोते सीखता है?
प्रयोग में आता है, परिचय करता है।
यहां भी उत्साह लाओ, भले ही नया विषय हो, नया लगता हो, सब समझ में आ जाएगा। और तेरे घर की बात है, दूसरे के घर की बात नहीं है कि छिपी रहे, वो बात छिपी रहने वाली नहीं है। कितना भी नया हो, देख तेरे में ज्ञान है कि नहीं है, है? कौन ना देगा वो बताओ। एकदम नया आदमी को ले लो, अजैन हो, जैन भी नहीं हो, चलो हाँ हमारे जैसा बाहर से आया हो, और जैन शास्त्र की मुख्य बात आएगी कि देख भैया तेरे में ज्ञान है, तो अपने में देखेगा वो, बात तो ठीक कहते हैं, ज्ञान तो है मेरे में, कि देख तेरे में राग भी है, वो भी उसको मालूम पड़ेगा। और राग है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो राग नहीं है, देख तुम अपने परिणाम को, अपने परिणाम को, अनुभव को देखते जाएगा, क्या समझ में नहीं आएगा? वेद ज्ञान मुद्दे की बात तो वो वेद ज्ञान की है कि ज्ञान है सो राग नहीं, राग है सो ज्ञान नहीं। अब तेरी भूल तुम, तुझे समझाते हैं कि मैं राग हूं, ऐसा तेरा अनुभव है, वो तेरी बड़ी भूल है, तुम ज्ञान स्वरूपी आत्मा हो। क्यों? राग का नाश होता है तेरा नाश
नहीं होता है,
तू जिंदा रहता है, राग मरता है तो मरता
नहीं है,
ज्ञान चालू रहता है, तू ज्ञान स्वरूपी आत्मा हो। जहां तक तुम ज्ञान स्वरूपी आत्मा हो ऐसा तुमको भाव भाषण नहीं हो लगे नहीं, वहां तक तुम तेरी भूल को स्वीकार करके अंतर में खोज चालू रखो, बात खत्म। इसमें लंबी चौड़ी बात है कौन सी, बात तो इतनी सी है प्रयोजन की, तो प्रयोजन की बात तो इससे इससे ज्यादा है ही नहीं। फिर हम जन अनजाना है अनजाना है वो बात कहां तक करने की है, है? और दिगंबर होकर के आप लोगों को तो घर की चीज है, है? एक शब्द में अनंत आगम रहे हैं ज्ञानी के, एक शब्द में अनंत आगम रहे हैं, तो कृपानुदेव का वचन है। गुरुदेव बहुत महिमा करते थे इस बात का, कभी कभी इस बात का बहुत महिमा करते थे, वो हो देखो तो सही क्या लिखा है, एक शब्द में अनंत आगम है, बिल्कुल सही बात है। क्यों कि अनंत आगम जिस ज्ञान स्वभाव में से निकले वो स्वभाव को स्पर्श करते वो एक शब्द निकला है, इसलिए एक शब्द में अनंत आगम है। पूरा शास्त्र तो आगम है ही, लेकिन एक शब्द में, एक एक शब्द में अनंत आगम है। वो कृपानुदेव तो लिखते हैं कि एक बात करते, एक वचन पढ़ते शास्त्र का, हमारा उपयोग हजारों शास्त्र में फरी वड़े से घूम जाता है। उपयोग हजारों शास्त्र में फेरो मारी आवे से, एम के से ठीक आटो मारी आवे से, चक्कर लगा लेता है, ऐसा हमारा उपयोग है कि एक शास्त्र का वचन पढ़ते हैं हमारा उपयोग हजारों शास्त्र में चक्कर लगा के आ जाता है, एक सेकंडों में, सेकंडों में उतना उपयोग चला जाता है। अंतर मुहूर्त में 12 अंगनी रचना करे थे, 11 अंग 14 पूर्व उनको तो लब्धि थी, ये तो नीचे के गुण स्थान में है तो भी इतना सामर्थ्य था, बहुत सामर्थ्य था। देखो क्रम समझने से क्रम आ जाता है, क्रम को समझ लिया इससे क्रम में प्रवेश हो गया क्या, कि नहीं नहीं हुआ ना, तो एक जानकारी की बात है, क्रम की बात तो एक
जानकारी,
मुद्दे का काम करने लगो सब बराबर चालू हो जाएगा।
सब बोले ना देख,
देख तो अवलोकन करने का आ जाएगा, अवलोकन कब होगा, कौन देखेगा, वो शुद्ध होना है वो देखेगा। और ऐसा प्रयास करने में कामयाब नहीं होगा तो वेदना आए बिना रहेगी नहीं कि मेरा काम क्यों नहीं होता है, आ जाएगा सब, आ जाएगा
देख देख सब की बातें है।
क्या कहते हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश वो चैतन्य का अंश है, उससे चैतन्य स्वभावी आत्मा का निर्णय होता है, क्योंकि वह राग द्वेष के पुण्य पाप का अंश नहीं है। ये जो ज्ञान दर्शन वीर्य है वो पुण्य पाप का अंश नहीं है, राग द्वेष का अंश नहीं है। राग द्वेष पुण्य पाप वह तो औपाधिक भाव है, और ज्ञान दर्शन वीर्य तो निरुपाधिक भाव है, उपाधिक भाव नहीं है। ऐसे आत्मा का निर्णय करना वह मांगलिक है। देखो गुरुदेव ने क्या कहा कि वैसे आत्मा का यथार्थ निर्णय करना, आत्मस्वरूप का यथार्थ निर्णय करना, यथार्थ भाव भाषण करना वो मांगलिक है। यहाँ से पवित्रता चालू होती है। ये पहले में शुरुआत में पहले में पहला मंगल कार्य यहाँ से चालू हुआ, स्वरूप का भाव भाषण हुआ। अपने मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान में आत्मा की फोटो आई, निर्णय हुआ तो क्या हुआ, फोटो आई, जैसा स्वरूप है वैसा प्रतिबिंब हुआ। बस वो ज्ञान अभी अनुभव के लिए दूर रहने वाला नहीं है। फिर यहाँ से नई चेतना प्रकट होती है, जैसे कहते हैं ना कोई इसको नया लोई नया खून मिला, ऐसे नई चेतना जैसे प्रकट हो गई, ज्ञान चेतना। तो वहाँ से जो स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ उठता है वो इतनी तेजी से उठता है और इतना जोर से काम करता है। अनुभव को ले आएगा। जिसको निर्णय हुआ उसको अल्पकाल में अनुभव हुए बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए ये निर्णय को स्वानुभव का सम्यक दर्शन का अंग बोलने में आया है, कारण नहीं बोला, उसका अंग बोला है। ये तो अंग है इसका। यहाँ तक
भगवान।